તારીખ 18-9-1991 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા હૈદરાબાદમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 33.
આમ તો ફેક્ટર જુદા જુદા છે, પણ બંને એકત્વ અને ભિન્નત્વ સમજાવવા માટે છે. બાકી તો એક જ પદાર્થોના કાર્યોમાં અનેક ફેક્ટરથી પરિણામ ક્રિયા થાય છે. એવી રીતે મિથ્યાત્વ થવાના અનેક પ્રકારો છે, એમાં આ મુખ્ય પ્રકારો છે, કર્તા કર્મપણું અને આધારાધેયપણું અને પોતાપણું થવું, મમત્વપણું થવું, અન્ય પદાર્થમાં મમત્વપણું થવું. આ ત્રણ મિથ્યાત્વ થવામાં મુખ્ય પ્રકારો છે. સામાન્ય રીતે ધર્મ આત્માના આધારે થવાને બદલે અમુક પ્રકારની ઈચ્છિત પરિસ્થિતિ હોય તો ધર્મ થાય, એ મુખ્યપણે માણસને અભિપ્રાયની ભૂલ રહી જાય છે. એટલે શ્રદ્ધા જ્ઞાનની બે ભૂલ છે એમાં. ધર્મ તો આપણે કરીએ, પણ આપણને અનુકૂળતા ક્યાં છે ધર્મ કરવા માટે? હૃદયના કોઈને કોઈ પ્રકારોને પોતે એનો પોતે આધાર રહી લે છે. શરીર સ્વાસ્થ્યથી લઈને બહારને કોઈ પ્રતિકૂળતાઓનો આધાર લે છે, કોઈ અનુકૂળતાઓનો આધાર લે છે. એ આધાર બુદ્ધિ સ્વાશ્રય કરવામાં, પરની આધાર બુદ્ધિ સ્વાશ્રય કરવામાં મુખ્ય અવરોધ છે, મુખ્ય પ્રતિબંધ છે. છેવટે માણસને એમ કહે, સ્વાસ્થ્ય બરાબર નથી રહેતું ને, એટલે પણ કામ નથી થતું. ક્યાંથી માંડીને કાંઈ ને કાંઈ ઉદય તો હોય જ છે. અજ્ઞાન દશામાં ઉદયની સાથે સમાધાન રહેતું નથી, પણ અસમાધાન રહે છે. અસમાધાનમાં ઉપાધિ વધે છે, અને એ ઉપાધિને વશ એવું લાગે છે જીવને કે આવું બધું, આવી બધી પરિસ્થિતિમાં મને ધર્મ ન થઈ શકે, અથવા ધર્મ થવાનું ઘણું કઠણ છે, આમાં ઘણું મુશ્કેલ છે, આમાં થઈ શકે એવું નથી લાગતું, એમ લાગે છે. એ બધું આધાર બુદ્ધિનું કારણ છે. મુખ્ય એમાં આધાર બુદ્ધિ છે. એટલે આત્માર્થી જીવ પહેલેથી એવું વિચારે છે કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, મારું સ્વકાર્ય કરવા માટે મારે પ્રયત્ન ચાલુ જ રાખવો જોઈએ. હર પરિસ્થિતિ મેં, હર હાલત મેં આત્માર્થી કો એસા ભાવ રહેતા હૈ કે મુજે મેરા આત્મહિત કા કાર્ય તો કરને કા પ્રયાસ ચાલુ હી રખના ચાહીએ. દૂસરા કુછ હોવે, દૂસરા કુછ નહીં હોવે, ઈચ્છા કે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ બને નહીં બને, વો ગૌણ બાત હૈ. आत्महित तो हर हालत में मैं करने का प्रयास चालू रखूंगा, ऐसी प्रधानता अपना हित की प्रायोरिटी जिसको कहते हैं, ये आत्मार्थी को हमेशा रहती है, उसी को आत्मार्थी कहते हैं। उसको कुछ लाभ आत्मलाभ हो सकता है, ऐसा नहीं होता है वहां तक आत्मलाभ होने का कोई अवकाश प्राप्त नहीं होता है। जानन क्रिया आधार है, यहाँ से ही आत्म स्वभाव ग्रहण होता है, उसी के आधार से, माध्यम से। आधार मैंने माध्यम, आधार मैंने अवलंबन नहीं, माध्यम, इसलिए वहां आधार शब्द लिया है। क्योंकि पहचान भी ज्ञान क्रिया में से हुई नहीं, इसलिए पर्याय बुद्धि तो कैसे होती है वो अपन पहले स्पष्ट समझ लें कि जितनी पर्याय है मात्र उतना हो, ऐसा अवधारण हो जाना पूरे पूरा। पर्याय जितना ही हो ऐसा अनुभव होना, ऐसा अपना अस्तित्व का अवधारण हो जाना, उसी को पर्याय बुद्धि कहते हैं। बाकी अनुभव तो पर्याय में ही होता है, चाहे निगुत का जीव हो, चाहे सिद्ध परमात्मा हो, मैंने सभी पर्याय आगे, अनुभव तो पर्याय में होता है, त्रिकाली में अनुभव नहीं होता। ये तो अपने पढ़ा 376 नंबर के बोल में, चनामृत में बहन श्री जी। पर्याय के पकड़ ऐसी हो जाए कि त्रिकाली का भान नहीं रहे, उसी को पर्याय बुद्धि कहते हैं। जो त्रिकाली के भान में है, यानी अपने मूल स्वरूप के भान में है, उनको पर्याय संबंधित सूक्ष्म का सूक्ष्म ज्ञान हो जा होता है और पर्याय बुद्धि नहीं होती। और देखिए कि ज्ञानियों को मुनि पद की भावना होती है, अपूर्व अवसर गाया श्रीमद जी ने, और केवल ज्ञान की पूर्ण दिशा की भावना भी होती है, अभिलाषा होती है, मोक्ष अभिलाष जिसको कहते हैं, तो वहां तो पर्याय बुद्धि हो जानी चाहिए थी, तो प्राप्ति की भावना है, फिर भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि मैं त्रिकाल शुद्ध परम परिणामी भाव हूं, ऐसा भान रहता है उनको, ऐसा नहीं होता। जैसे कोई आदमी पैसे वाला है, लेकिन कोई गुंडों ने पकड़ लिया, तो क्या बोलेगा कि मैं गरीब आदमी हूं, मुझे छोड़ दो, नहीं तुम पैसा निकालो। भाई साहब, मेरे पास कुछ पैसा ही नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूं। इतना एक्टिंग करेगा अभिनय, अपनी गरीबी दर्शाने का इतना अभिनय करेगा कि सामने वाले को सचमुच लगेगा कि गरीब आदमी, छोड़ दो उसको। लेकिन उसको पूरा भान है कि मेरे पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है। तो उतना प्रसंग वसात तो जैसा कैसा भी अपनी गरीबी का भाव व्यक्त करता है, फिर भी उसका ज्ञान क्या नाश हो जाता है कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मिट जाता है क्या, बराबर बांध रहता है। ऐसे प्रसंग वसात उदय का कार्यों में ज्ञानी दिखते हैं, ये दूसरे संसारी जैसे ही दिखते हैं, लेकिन अंदर में भान है, ये बहुत बड़ी बात है। एक पौड़ એટલે સમય, ઓછામાં ઓછો સમય। તો પાત્ર જીવ કો અપના સમય વ્યર્થ ચલા જાવે આયુષ્ય કા એક પલ ભી તો ઉનકો પુષાણ નહીં હૈ, પોસાતા નહીં। ઇસલિયે વો જાગૃતિ સે આત્મ જાગૃતિ આવે ऐसे प्रयास में अपना समय व्यतीत करना चाहता है। उपयोग मैंने सावधानी, यहाँ उपयोग का अर्थ है सावधानी। एक पल भी सावधानी से वो गुजारना चाहते हैं। जैसे लोग खाने में, पीने में, मौज मजा में, सांसारिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, जीवन का बहुत भाग समय का निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है तो कितना समय चला गया। ऐसा पात्र जीव को ऐसा परिणाम नहीं होता, ये पात्र जीव का लक्षण है, ऐसा लिया है। जो एक हीरे को जानता है वो सभी हीरे को जानता है। कभी जवेरी ऐसा बोलेगा कि जिस हीरा से मैं पहचान करने को सीखा, अब दूसरा आएगा तो मुझे क्या क्या पता चला, मैं तो उसको देखा ही नहीं, कभी ऐसा बोलेगा क्या? पहचान का अर्थ यही है, वो पहचान जाता है। ठीक है, ऐसा ही। पंक्ति को कभी करना नहीं चाहिए ऐसा, यानी के वचन में या कोई पंक्ति में, कवित्व हो, कुछ भी हो, जो अपनी साधना से जो वचन सहज निकले, क्योंकि ज्ञानी के वचन निकलते हैं वो अपनी साधना के कारण से निकलते हैं। वचन के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो अपनी साधना है। तो ऐसा समझकर उतना बहुमान रहना चाहिए कि साधना से निकली हुई बात है, उसमें कोई फेरफार नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए, जो निकला है सहज धारा में से निकला है, एक अक्षर एक मात्रा का फेरफार नहीं करना चाहिए। एक तो लौकिक प्रामाणिकता में भी ये बात तो आती है कि किसी भी कृति किसी की हो, उसमें दूसरों को बिना इजाजत फेरफार करने का अधिकार नहीं रहता। ये तो लौकिक प्रामाणिकता भी है। और मुमुक्षुओं को तो ज्ञानी के प्रति इतना बहुमान होता है कि वो तो समझते हैं कि वो कहाँ विराजते हैं, हम कहाँ रहते हैं, कहाँ हमारा स्थान, कहाँ सत्पुरुष का स्थान। वो इतने ऊंचे बैठे हैं, हम इतने नीचे हैं कि इनकी बात में हम क्या कर सकता है, ये तो बात होनी नहीं चाहिए। जागृति में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, इतना बहुमान रहना चाहिए। ज्ञानी का वचन, सत्पुरुष का वचन, ये तो परमेश्वर के वचन है, ऐसा बहुमान रहना चाहिए। उतनी भक्ति होती है उसको कुछ दर्शन हो गलता है तो लाभ होने की संभावना है। इतनी भक्ति होनी चाहिए इनके वचन के प्रति, इस वचन के आशय के प्रति। लिखा है उन्होंने 526, पता है सत्पुरुष का योग होने के बाद आत्मज्ञान कुछ दुर्लभ नहीं है। वैसे तो आत्मज्ञान बहुत बहुत दुर्लभ है, अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि अनंत काल में नहीं पाया। लेकिन सत्पुरुष का प्रत्यक्ष योग होने के बाद आत्मज्ञान कुछ दुर्लभ नहीं। तथापि एक शर्त है, सब्जेक्ट टू कंडीशन वो बात है कि सत्पुरुष के प्रति, सत्पुरुष के वचन के प्रति और उस वचन के आशय के प्रति प्रीति भक्ति उत्पन्न नहीं हो, वहां तक आत्मविचार भी जीव को उदय में आने योग्य नहीं है। आत्मकल्याण का विचार भी उसको नहीं हुआ है। और ऐसे जीव को सत्पुरुष का योग हुआ है ऐसा कहना, ऐसा खरेखर उनको भाषित तो हुआ ही नहीं है कि मुझे कोई अपूर्व योग हुआ है। तो उसको योग हुआ है ऐसा कहना भी कठिन है, यानी नहीं कहना चाहिए तो उसको योग हुआ है, उसको योग हुआ ही नहीं है, योग अयोग बराबर है। 522 का थोड़ा યોગ બળ સહિત એટલે જેમનો ઉપદેશ ઘણા જીવોને થોડા પ્રયાસે મોક્ષ સાધન રૂપ થઈ શકે એવા અતિશહિત સહિત જે પુરુષ હોય તે જ્યારે યથા પ્રારબ્ધ ઉપદેશ વ્યવહારનો ઉદય પ્રાપ્ત થાય ત્યારે મુખ્યપણે ઘણું કરીને તે ભક્તિરૂપ પ્રત્યક્ષ આશ્રય માર્ગ પ્રકાશે છે, પણ તેવા ઉદયયોગ વિના ઘણું કરીને પ્રકાશતા નથી. બીજા વ્યવહારના યોગમાં મુખ્યપણે તે માર્ગ ઘણું કરીને સત્પુરુષો પ્રકાશતા નથી, તે તેમનું કરુણા સ્વભાવ પણ છે. જગતના જીવોનો ઉપકાર પુરવાર પર વિરોધ ન પામે અથવા ઘણા જીવોને ઉપકાર થાય એ આદિ ઘણા કારણો દેખીને અન્ય વ્યવહારમાં વર્તતા તેવા પ્રત્યક્ષ આશ્રયરૂપ માર્ગ સત્પુરુષો પ્રકાશતા નથી. કારણ કે ઘણું કરીને તો અન્ય વ્યવહારના ઉદયમાં અપ્રસિદ્ધ રહે છે. બીજો વ્યવહાર હોય, ગ્રસ્તનો વ્યવહાર હોય તો પોતે પ્રસિદ્ધ નથી થતા, અપ્રસિદ્ધ રહે છે. અથવા કાંઈ પ્રારબ્ધ વિશેષથી સત્પુરુષપણે કોઈના જાણવામાં આવ્યા હોય, કોઈ ઓળખી લીધા હોય એને, તો પણ પુરવાર પર તેના સ્ત્રીનો વિચાર કરી જ્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી વિશેષ પ્રસંગમાં આવતા નથી. અથવા ઘણું કરીને અન્ય વ્યવહારના ઉદયમાં સામાન્ય મનુષ્યની પેઠે વિચરે છે. તેવું વર્તાય તેવું તેમ વર્તાય તેવું પ્રારબ્ધ ન હોય તો જ્યાં કોઈ આવસ 521 છે, હું આ તો 522 જીવને જ્ઞાની પુરુષનું ઓળખાણ થઈ તથા પ્રકારે અનંતાનુબંધી ક્રોધ માન માયા લોભ મોળા પડવાનો પ્રકાર બનવા યોગ્ય છે કે જેમ બને અનુક્રમે તે પરીક્ષીણપણાને પામે છે. સત્પુરુષનું ઓળખાણ જેમ જેમ જીવને થાય છે તેમ તેમ મતાભિગ્રહ દુરાગ્રહ આદિ ભાવ મોળા પડવા લાગે છે અને પોતાના દોષ જોવા ભણી ચિત્ત વળી આવે છે. વિકથા આદિ ભાવમાં નિરસપણું લાગે છે કે જુગુપ્સા ઉત્પન્ન થાય છે. જીવને અનિત્ય આદિ ભાવના ચિંતવવા પ્રત્યે બળ વીર્ય સ્ફુરવા વિશે જે પ્રકારે જ્ઞાની પુરુષ સમીપે સાંભળ્યું છે તેથી પણ વિશેષ બળવાન પરિણામથી તે પંચ વિષય આદિને વિશે અનિત્યાદિ ભાવ દ્રઢ કરે છે. અર્થાત સત્પુરુષ મળે આ સત્પુરુષ છે એટલું જાણી સત્પુરુષને જાણ્યા પ્રથમ જેમ આત્મા પંચ વિષયાદિને વિશે રક્ત હતો તેમ રક્ત ત્યાર પછી નથી રહેતો અને અનુક્રમે તે રક્તભાવ મોળો પડે એવા વૈરાગ્યમાં જીવ આવે છે. આવા સત્પુરુષનો યોગ થયા પછી આત્મજ્ઞાન કાંઈ દુર્લભ નથી એ આપણે વાંચ્યા એ વચનો આવે છે. જીવને સત્પુરુષનો યોગ થયે એવી ભાવના થાય કે અત્યાર સુધી જે મારા પ્રયત્ન કલ્યાણને અર્થે હતા તે સૌ નિષ્ફળ હતા. અત્યાર સુધી મેં ખોટો પ્રયાસ કર્યો છે, સાચી લાઈન મને હાથમાં નથી આવી, લક્ષ્ય વગરના બાણ પેઠે હતા. અચ્છી બાત હે, મુજે હિન્દી મેં કરતા હું. જીવ કો સત્પુરુષ કા યોગ હોને સે એસી ભાવના હોતી હૈ કે અબ તક જો ભી મેરે પ્રયત્ન કલ્યાણ કે બારે મેં થે વે સબ નિષ્ફળ થે, બિના લક્ષ્ય કા બાણ જૈસે થે. પરંતુ અબ સત્પુરુષ કા અપૂર્વ યોગ હુઆ હૈ તો મેરે સર્વ સાધન સફળ હોને કા હેતુ હૈ. લોક પ્રસંગ મે રહેકર જો નિષ્ફળ નિર્લક્ષ સાધન કિયા વહ પ્રકાર અબ સત્પુરુષ કે યોગ સે નહીં કરકે જરૂર અંતર આત્મા મે વિચાર કરકે દ્રઢ પરિણામ રખ કરકે જીવ કો ઇસ યોગ કો વચન કે વચન વચન મે જાગૃત હોને યોગ્ય હૈ, વચન કે પ્રતિ જાગૃત હોને યોગ્ય હૈ. जागृत रहने योग्य है और जिस जिस प्रकार से भावना करके जीव में दृढ़ता करके जैसी जैसे उसको प्राप्त हो, प्राप्त योग मैंने सत्पुरुष का प्राप्त योग जिससे निष्फल न हुए उस प्रकार उसी बल आत्मा में वृद्धिगत करना कि इस योग से जीव को अपूर्व फल प्राप्त होने योग्य है, उसमें अंतराय करने वाला परिणाम कैसे हैं कि मैं जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ ऐसा मेरा अभिमान और कुल धर्म पूर्वक जो भी करते आए हैं अब तक उस क्रिया को कैसे छोड़ देना, कैसे छोड़ सकते हैं ऐसा लोग, भाई हम छोड़ देंगे तो लोग क्या समझेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा लोग भाई सत्पुरुष की भक्ति भक्ति में भी लौकिक भाव, जैसे मैं अच्छी भक्ति करता हूँ, सबसे मैं बस ज़्यादा निकट हूँ, मेरे साथ ज़्यादा प्रीति है ऐसे, और कदापि कोई पंच विषयाकार ऐसे कर्म ज्ञानी के उदय में देखकर ऐसा पंच विषय के भाव खुद भी आराधन करे यानी आचरण करे, नकल करे मैंने, ये आदि प्रकार है। वही अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, यह प्रकार विशेष रूप से समझने योग्य है, तथापि अभी जितना हो सका उतना लिखा है, ये पैराग्राफ है। ऐसे विचार आना चाहिए, योग होने के बाद इस प्रकार के विचार रहना चाहिए आत्मार्थी जीव को। अच्छा वर्णन आत्मार्थी जीव कैसे होते हैं ये बात जगह जगह निकलती है, वचनामृत में, पत्रों में बहुत जगह मिलती है। मतलब कोई गलती नहीं किया, उन्हें अच्छा ही किया है, गलती बिल्कुल नहीं किया है, कुछ भी। ज्ञानी का संग परम सत्संग है और मुख्य साधन वही है मुमुक्षु के लिए, बाकी सब साधन है वो इसके आगे गौण है, इसलिए उन्होंने कोई गलती नहीं किया, गलती किया ही नहीं है, उसने विवेक किया है, अच्छा किया है, गलती तो किया ही नहीं है मगर विवेक किया है, ये बात है। छह सौ इकसठ पत्र में वो बात तो स्पष्ट किया है कि मुमुक्षु को शास्त्र भी उपलब्ध है और सत्पुरुष का सत्समागम भी उपलब्ध है, फिर भी जो सत्समागम को छोड़ करके ऐसा कोई बाना पकड़ता है कि शास्त्र तो मुनिराजों का, आचार्यों का लिखा हुआ है और सत्समागम तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती का है, इसलिए हम तो शास्त्र पढ़ेंगे, उसको अप्रशस्त शास्त्रीय अभिनिवेश है, प्रशस्त भी नहीं लिया, इसमें अशुभ भाव ले लिया, शुभ नहीं लिया। यहां प्रश्न होना चाहिए कि शास्त्र पढ़ना तो शुभ भाव है और उसको अशुभ भाव क्यों कहा, कि ऐसे भाव जिसको को होते हैं कि विद्यमान ज्ञानी सत्पुरुष हो, उससे विमुख हो करके या उदास हो करके या उसको गौण करके। हम तो आचार्यों के शास्त्र पढ़ेंगे, आगम हमारे पास है, उनको तीव्र अहम भाव वर्तता है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष के समीप में तो नम्रता करनी पड़ती है। वो नम्रता उनको नहीं आती है, न करना चाहता भी है, तो इसका अभिप्राय में तीव्र मान का प्रकार देखा है कृपालु देव ने। उस तीव्र मान का प्रकार देख करके उसकी नाड़ी में से निकाली है ये बात, रोग नाड़ी से पकड़ा है, ऊपर से निदान होने का कोई प्रकार नहीं दिखता है, क्योंकि वो तो शास्त्र पढ़ता है। शास्त्र पढ़ने वाला इतनी बड़ी गलती करता है कि वह उसके परिणाम में शुभ से अधिक तो अशुभ। ऐसे ऐसे बहुत बातें आती हैं। तो है ही अपात्र जीव को ये बात समझ में नहीं आती कि मुमुक्षु की भूमिका में सत्पुरुष का योग का महत्व क्या चीज है, कैसा महत्व होता है, ये बात उनको समझ में नहीं। लिखा हुआ भी शास्त्र वचन है वो भी सत्पुरुष का ही है, और सुनते हैं वो भी वचन तो सत्पुरुष का है, लेकिन वो सुनते और पढ़ते हमारी समझ में कोई विपर्यास होगा तो न तो शास्त्र दिखाएंगे, न तो रिकॉर्ड बताएगी, टेप बताएगी। तो सत्समागम में उसका परिचर्यन करना चाहिए कि ये बात में क्या कहते हैं सत्पुरुष, उसको माध्यम बनावे हम। सत्संग मैंने क्या कि सत्पुरुष के वचनामृत का परिचर्यन करना, तो उसमें वो बात छोड़ने के तो नहीं आई, लेकिन हम अकेले सुनते रहे और हम अकेले पढ़ते रहे वो पद्धति, और हम साथ में बैठकर स्वाध्याय करके इस पर हमारे विचारों का आदान प्रदान करें, यह पद्धति में। पहले वाली पद्धति में भूल होगी तो अपने को पता नहीं चलेगा, हमारी समझ में गलती हो जाएगी तो अपने को खुद को पता नहीं चलेगा, क्योंकि भूल तो जानबूझ के तो हम करते नहीं, तो अपनी भूल अपने जानने में तो आती नहीं। अभी 2, 4, 6 या 10, 15 जो भी हमारे संघ में रहते हैं मुमुक्षु, किसी का ध्यान जाता है कि यहाँ तो ऐसा कहना चाहते हैं, तो दूसरा कहेगा हम तो बोलो ऐसा लगता है कि यहाँ श्री गुरु ऐसा कहना चाहता है, सदगुरु का कहने का ये अभिप्राय निकलता है, दूसरा बोले तो हमको ऐसा लगता है, तो फिर इसकी चर्चा होती है, छानबीन होती है, उसमें से निष्कर्ष निकलता है कि यथार्थता क्या है, वरना अयथार्थ रूप से भी हम समझेंगे तो ये पद्धति में तो भूल मिटने के कोई अवसर नहीं आता है। इसलिए सत्संग वो चीज है कि जिसमें सत्पुरुषों के वचनों का परिचर्यन करना, उसका हर पहलू से विचार करना, तो उसमें उसका त्याग तो हुआ ही नहीं, लेकिन पद्धति कौन सी अच्छी है या ठीक है हमारे लाभ के कारण में कौन सी पद्धति अच्छी है, इसका विचार करते हैं, उसी पद्धति में जाना चाहिए। इसलिए कई लोग क्या करते हैं कि आज गुरुदेव के टेप तो अवेलेबल हैं, बहुत मिलती हैं, तो शास्त्र स्वाध्याय में नहीं बैठते, ऐसा विचार करते हैं कि हम तो घर पे हमारे समय की अनुकूलता पर हम सुन लेंगे। इधर तो सामूहिक कार्यक्रम में तो समय की पाबंदी रहती है, नियत समय में उपस्थित रहे तो रह सकते हैं, वरना तो कोई मिलते नहीं फिर, तो उसमें तो समय की भी स्वतंत्रता रह गई कि जब चाहे रात को 12 बजे भी हम सुन सकते हैं। तो इसलिए वो पसंद करते हैं लोग, लेकिन सत्संग में जो फायदा होता है, लाभ होता है, वो अकेले पढ़ने में या सुनने में नहीं होता है। हम तो इस बात को वहां तक विचारते हैं कि हमारे यहाँ पद्धति ऐसी हो गई है कि एक विद्वान होता है, पंडित होता है, पढ़ता है, सब सुनते हैं, वो सुनाता है, विवेचन करता है। तो ज्ञानी हुए दूसरी बात है, गुरुदेव की बात अलग थी कि वो व्याख्यान देते थे, हम लोग सुनते थे। लेकिन विद्वान को तो ऐसा होना, उसी प्रकार से गुरुदेव की नकल हो जाना, ये हमको ठीक नहीं लगता है। हमारे में ये मेरा अंगत अभिप्राय है। क्या होना चाहिए कि साथ में बैठकर एक बात, एक वचनामृत, एक वाक्य, एक पैराग्राफ पकड़ करके उसके ऊपर चर्चा विचारना करनी चाहिए आपस में। भले कोई किसी का सूक्ष्म अधिक हो, किसी का कम हो, किसी की योग्यता कम हो, किसी की योग्यता अधिक हो, पात्रता में भी कमी बैसी होती है, सूक्ष्म में भी कमी बैसी होती है, लेकिन आपस में चर्चा विचारणा करे, यही सत्संग लाभदायी है। एक बोले दूसरे सब सुनते रहें, ये जो व्याख्यान पद्धति है वो ज्ञानियों के लिए तो ठीक है, लेकिन ज्ञानी की अनुपस्थिति में ये बात इतनी लाभदायी नहीं है। और खास करके नुकसान होगा ये विद्वान को होगा, श्रोता को इतना नुकसान नहीं होता है इस मामले में, इस प्रसंग में विद्वान को नुकसान हो जाता है। इसलिए कई आत्मार्थी लोग ऐसे होते हैं कि उसके सूक्ष्म होते हुए, पात्रता होते हुए भी अपनी पद्धति से वो वांछनकार के निमित्त से पढ़ना बैठना नहीं चाहते हैं। ऐसे हैं लोग हमारे जानकारी में, अपने समाज में। हम तो वांछन नहीं करते, हम तो वांछन नहीं करना चाहते, ये पद्धति में हमको तो डर लगता है कि लोग हमको ऊंचे स्थान पर बिठाते हैं तो सुनने वाले नीचे स्थान पर बैठते हैं, और इसमें हमारी साइकोलॉजी है, मानसिक परिस्थिति है, उसमें हमको तो खतरा लगता है, तो नहीं बैठते हैं ऐसे। हमारे समाज में ऐसे आत्मार्थी लोग हैं, ना दे देते हैं। और कई लोगों ने तो ऐसा वांछन कार्य छोड़ दिया है, हमारा काम नहीं है, इसमें हमको नुकसान हुआ है, हमको पता है कि हमको नुकसान हुआ था, भले ही नहीं बताया हो लेकिन हमको पता है कि हमको नुकसान हुआ था, अभी हमको हमारे आत्मा को नुकसान नहीं करना, ऐसे भी लोग हैं। तो इसलिए ऐसे बहुत सी चर्चाएं हमारे यहाँ चलती है। इस पर से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि गुरुदेव की बात अलग थी, हम लोगों में तो आपस में विशेष चर्चा विचारणा करें, इस प्रकार से सत्संग करें, वही अच्छा है। इसलिए चर्चा का तो प्रसंग रखना ही चाहिए, जब भी वांछन का भी प्रकार हो, भी ये प्रणाली का एकदम नहीं छूट जाएगी। कहते हैं तो लोग मानते नहीं है कि नहीं नहीं अपने को जो चलता है वैसे चलाओ, ऐसे कहते हैं, तुम क्या करते हैं, कट करो उसको। एक घंटा स्वाध्याय चलता है, दूसरा आधा घंटा एक घंटा चर्चा का रखो, या पौने घंटा स्वाध्याय का करो, पौने घंटा चर्चा का करो, या सुबह एक घंटा स्वाध्याय के शाम को चर्चा रख लो। हर जगह चर्चा तो होनी ही चाहिए, ये थोड़ा प्रथा में भी फेरफार हुए तो लाभकारी हो जाएगा। क्या प्रश्न है? सामायिक ध्यान, तप, ये सब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बाद विशेष स्वरूप के एकाग्रता के प्रयोग है। अब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का तो ठिकाना नहीं हुए और सीधा हम एकाग्रता के प्रयोग में चले जाएं, कर्म विपर्यास हो जाएगा। घोड़ा पीछे, गाड़ी आगे, ऐसा हो जाएगा। मेहनत, समय बेकार, शक्ति बेकार, मेहनत बेकार और नुकसान होगा गृहित मिथ्यात्व का। साधन नहीं है उसको साधन मान लिया, इसका भी हिसाब तो लगाना पड़ेगा ना, नुकसान का। तो जितना नुकसान हुए उतना हिसाब तो गिने। बहुत बार आए चुकी वो बात, तो वास्तविक शुरुआत पूर्णता के लक्ष्य से बिना होती नहीं। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा ये बात हैदराबाद में चली है। हाँ, अपने प्रतिष्ठा के समय में चली थी बात। मैं कुछ 15 दिन में इधर रहा, मैं प्रतिष्ठा एक हफ्ता चली, इसके पहले एक हफ्ता में आ गया था इधर। बहुत बात चली है, आगे भी चर्चा हुई, इसके पहले भी चर्चा हुई। ऐसी बात को ऐसी चोट लेकर, चोट लग जानी चाहिए, चोट जानी चाहिए कि दोबारा पूछनी नहीं पड़े। ऐसी महत्वपूर्ण जो बात है वो तो जीवन में एक दफे मिल जाए ना कभी, तो ऐसे छोड़ जाए के जीवन भर तो नहीं जाए वो। दूसरा, बाहर का संयोग का, उदय का, मोह रुचि बहुत तीव्र है, इसलिए ऐसा होता है। वो असर नहीं होने देते, समझते हैं सुनते हैं लेकिन असर क्यों नहीं आते? कि दूसरी असर में से हम मुक्त नहीं होते, मुक्त हुए नहीं, यही कारण है इसका। इतना तीव्र तीव्र दर्शन वो है, वो बोध का असर होने नहीं देता, ये प्रतिबंधक कारण है। बोध प्राप्त होने में, बोध ग्रहण होने में ये दर्शन मोह सबसे बड़ा प्रतिबंधक कारण है। इसलिए सबसे पहले दर्शन मोह कैसे कटे, उसका अनुभव कैसे कटे, क्योंकि रस में शक्ति होती है परिणाम में। ये तो ज्ञानी पुरुष के वचनामृत तो सबसे बड़े हंटर है, और खुद को भी अपना हित की तीव्र भावना होनी चाहिए। ये तो निमित्त है, ज्ञानी पुरुष के वचन तो निमित्त है, इनके प्रत्यक्ष योग भी निमित्त है, लेकिन अपने आप को तीव्र भावना होनी चाहिए कि अगर मैं इस भव में मेरा हित नहीं करूँगा या हित करने में मैं उपेक्षा रखूँगा, अवगुणना कर लूँगा, हित होने का अवसर है, तक मिलता है फिर भी, मौका मिलता है फिर भी, तो कुदरत मुझे वहाँ ले जाएगी कि जहाँ फिर आत्महित करने का मौका अनंत काल तक नहीं मिलेगा। हायर द पोस्ट हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मनुष्य भव सबसे ऊंची गति है, ऊंची पोस्ट मिली है, हमारी जिम्मेवारी भी सबसे ज्यादा है। यहाँ आत्मकल्याण आसानी से हो सकता है, फिर भी हम दरकार नहीं करेंगे, कुदरत हमें वहाँ धकेल देगी। ये कुदरत का कानून है कि जल्दी से आत्महित करने का मौका हमें नहीं मिलेगा। फिर ये बात ध्यान में रखनी है और शीघ्रातिशीघ्र आत्महित हुए ऐसी भावना से हमें प्रयत्न करना है, जब ही काम होने वाला है। तो बेंस ने एक वचनामृत में लिखा है, नंबर देव, स्वरूप का निर्णय किस हालत में होता है, यानी ज्ञान लक्षण द्वारा पहचान होती है वो किस हालत में होती है, कि सत की खोज तीव्र पिपासा के काल में होती है। तब तीव्र पिपासा मैंने क्या, 278 नंबर का ये वचनामृत है, 278, कि इतनी प्यास लगी हो, इतनी प्यास लगी हो कि पानी का एक बिंदु कहीं से मिलता है क्या, ऐसी प्यास लगे तो पानी के लिए कितना तड़पता है जी, ऐसी अंतर में स्वरूप की जिज्ञासा हो, पिपासा हो, उसी काल में ज्ञान लक्षण द्वारा पहचान होगा। वरना हम यही बात करते रहेंगे कि ज्ञान पर्याय तो है, ज्ञान लक्षण आप कहते हो, लेकिन हमको तो उसमें कोई लक्ष्य में बात आती नहीं है। श्री गुरु कहते हैं इसलिए मानना पड़ता है कि ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वभावी आत्मा की पहचान होती है, लेकिन ज्ञान उपलब्ध होने पर भी हमें तो कोई न लक्षण दिखता है न कोई लक्ष्य दिखता है, क्या करें, ये हमारी समस्या है। ये समस्या का समाधान नहीं मिलेगा ऐसी पिपासा लगने चाहिए। सोगानी जी किस हालत में सोनगढ़ आए थे, उसकी पूर्व भूमिका का प्रश्न हमने पूछा था उनको, ये प्रश्न हमने ही पूछा है जो दूरदर्शी प्रकाश में आया है वो, कि आपकी पूर्व भूमिका में कैसी स्थिति थी, कि उतना दुख लगता था अप्राप्ति का, स्वरूप की अप्राप्ति का इतना दुख लगता था कि जैसे पानी बिना देह छूट जाती है, वैसे या तो देह छूट जाएगा या तो विकल्प फट जाएगा, यानी निर्विकल्प दशा हो जाएगी, ऐसी असह्य परिस्थिति में आए थे। तो उनको शीघ्र बहुत फौरन उपलब्धि होगी, प्राप्ति होगी, ऐसी स्थिति आती है तब काम होता है, ऐसी स्थिति नहीं आती है वहां तक हमारा ध्यान जाना चाहिए उस प्रकार से, जिस प्रकार से जाना चाहिए उस प्रकार से नहीं जाता।
आश्रम आ रहा है,
श्रद्धा का संबंध ज्ञान वेदन से है, जानने के साथ नहीं है। हम उस बात को व्यवस्थित रूप से ऐसे कह सकते हैं कि ज्ञान में एक जानने का काम होता है और एक वेदन करना मैंने अनुभव करने का भी काम होता है। तो श्रद्धा मैंने प्रतीति का संबंध अनुभव के साथ रहता है, जानने के साथ नहीं रहता है। तो हम जानते हैं कि आत्मा भिन्न है, अनंत गुण का महान पर्वत है, अनंत सुख इसमें भरा है, बेहद सुख भरा है, लेकिन हमारा वेदन थोड़ी भी मिठाई खाते हैं उसके सुख में चला जाता है। तो हमारी प्रतीति वहां रहेगी ये मिठाई वाला सुख के साथ। जो जाना है कि आत्मा में अनंत सुख है उसके साथ प्रतीति नहीं जाएगी। प्रतीति का संबंध अनुभव के साथ है, जानकारी के साथ नहीं। इसलिए स्वरूप निर्णय के काल में प्रतीति शब्द का प्रयोग और निर्णय का विषय ऐसा लिया है 751 नंबर पत्र कि परमार्थ की स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति होती है। क्या परमार्थ की जानकारी से विश्वास नहीं आता है, अनुभवान से प्रतीति आती है परमार्थ की। परमार्थ मैंने मूल स्वरूप, तो वो अनुभवांश कहाँ है? कि ज्ञान का ज्ञान वेदन है वहां अनुभवांश है। जानकारी के साथ श्रद्धा का संबंध नहीं रहता। जानकारी बहुत कर लेते, 11 अंग 9 पूर्व कर लेते, अभी क्या? अभी तो उसका 10,000वां भाग भी नहीं है, 1,00,000वां भाग भी नहीं है अभी की जानकारी। लेकिन जानकारी से कुछ श्रद्धा नहीं बदलती। इसलिए तत्वानुशीलन में लिया है कि परलक्षी ज्ञान में श्रद्धा को बदलने की ताकत नहीं। जैसे शुभ राग में मिथ्या श्रद्धा बदलकर सम्यक श्रद्धा करने की राग में ताकत नहीं है, वैसे ही परलक्षी जानकारी में मिथ्या श्रद्धा तोड़ करके सम्यक श्रद्धा कर दे ऐसी ताकत ऐसा ज्ञान में भी नहीं है। ये स्वलक्षी ज्ञान में, अंतर ज्ञान में वो ताकत है, वो यहां से काम होने वाला है। इसलिए धारणा का कोई मूल्य नहीं है ज्ञानियों को, वो तो जितना वेदन उतना ही धर्म समझते हैं, जानकारी का कोई मूल्य नहीं है। ज्ञान होने के बाद तपस्या होती ही नहीं, करे क्या? हाँ, अपने आप हुए वही अच्छा है, अठ से करें ये बात ठीक नहीं है। प्रीति जबरदस्ती से करवा सकते हैं किसी से है? मिथ्यात्व दृढ़ होने का प्रसंग बहुत बनता है इसमें। साधन इस प्रकार नहीं है, फिर भी हम साधन मान लेते हैं तो गृहित मिथ्यात्व में दृढ़ हो जाते हैं। इसलिए ऐसे उल्टे मार्ग से नहीं चलना चाहिए, ऐसा नहीं करना। हाँ, सर्वज्ञ देव का, अनंत ज्ञानियों का, अनंत तीर्थंकरों की आज्ञा का उल्लंघन है इसमें। कहते हैं कि हम बच्चे को पहले एकड़ा सिखवाते हैं या पहले से हम बड़े बड़े उनको प्रॉब्लम दे देते हैं क्या, तो तुम ये इक्वेशन को गिनाओ है? पहले तो एकड़ा ही सीखना पड़ता है। वैसे जो ढंग से जो क्रम से धर्म शुरू होता है उस धर्म को तो हम जाने नहीं पहचाने नहीं और अपनी मनमानी कर ले वे बिना समझे, बिना समझे रोटी भी नहीं होती है। कोई इसलिए इसलिए सबके पास समझने को बैठना भी नहीं, किसके पास समझने को बैठना उसका पहला विचार करना है। हम लड़के को लिए ऐसा क्यों विचार करते कि उसको किन से कौन से स्कूल में बैठाना है? हमारे घर के पास भी स्कूल होती है और दो माइल के दूर भी होती है, लेकिन एजुकेशन कहाँ अच्छा मिलेगा ये देखेंगे हम, भले ही गाड़ी का खर्चा लगे है? समझ में नहीं? नहीं ऐसा नहीं, इसमें मिथ्यात्व कर्म ज्यादा बंध जाता है। ऐसा कर्म के निर्जरा का ये उपाय है ही नहीं, सब गड़बड़ी बहुत है संप्रदाय में। सही समझने का पहला कोशिश करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। संप्रदाय में जैसे समझाते हैं कि तुम जितनी तपस्या करोगे उतना तुमको कर्म के निर्जरा हो जाएगा, लेकिन ये तपस्या है ही नहीं। तपस्या किसको कहते वो अपन समझते नहीं, समझाने वाले भी नहीं समझते, तो दूसरे तो समझेंगे कहाँ से? उनको खुद को पता नहीं है कि तपस्या क्या है, निर्जरा क्या है। तत्व ज्ञान का तो वहाँ अभाव है, तत्व ज्ञान वहाँ है ही नहीं, तत्व ज्ञान की चर्चा भी नहीं चलती। उपाव तो बहुत किया, आनंद बेर किया और फिर नरक निगुद में चला गया, इससे क्या फायदा? ऐसी हमने मान ली है ऐसी नहीं की, जैसी हमने मानी है वैसी नहीं की। वो प्रकार अलग था, वो प्रकार अलग है। ऐसे बिना समझे नकल करने को जाएंगे तो कुछ हाथ में आने वाला नहीं है, सब नुकसान ही नुकसान हो जाएगा। गुरुदेव दृष्टांत देते थे कि जंगल में ठंडी के दिनों में, ठंड के दिनों में कुछ मुसाफिर लोगों ने और लकड़ी सब इकट्ठी करके अग्नि जला करके अपनी ठंडी को थोड़ा राहत कर दिया, तो वहाँ कुछ बंदर भी बैठे थे ऊपर, वो इसको भी ठंडी लगती थी पेड़ पे। उन्होंने सोचा कि इन लोगों ने अग्नि जलाई और उसको ठंडी नहीं लगती है, तो उन्होंने क्या किया कि वो आगे आता है ना जुगनू, जुगनू बोलते हैं, उसको पकड़ पकड़ लकड़ी तो उन्होंने भी इकट्ठी किया, क्योंकि उन लोगों ने भी लकड़ी इकट्ठा किया था, लेकिन अग्नि को प्रज्वलित कर दिया तो गर्मी हो गई। तो बंदरों ने भी लकड़ी तो इकट्ठी किया और जुगनू को पकड़ पकड़ कर रखने लगे, उसमें अग्नि मिली नहीं और ठंडी गई नहीं, उसको नकल करने लग गए। हाँ, वो चमकता है वो अंधेरे में, ऐसे नकल नहीं करना चाहिए कि भगवान ऐसे करते थे हम भी उसकी नकल कर ले हमको भी फायदा हो जाए, ऐसा फायदा कभी नहीं होता है।